नमस्कार दोस्तों, धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ मैं, आइए सुनिए डॉक्टर स्नेहा की ये कहानी।
मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित।
मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं, ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन मुझसे रुककर बिना बताए चला गया था। ताज्जुब की बात यह थी कि वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा था। इतनी क्या नाराजगी हो सकती है मुझसे। मैं अगले दिन सुबह घर के छत पे परेशान खड़ी थी, अर्जुन का फोन नहीं लगा तो मैंने एसपी मधोक को कॉल लगाया। मधोक जी, वो अर्जुन का फोन बंद आ रहा है, उससे बात करनी है।
स्नेहा, मुझे तो लगा कि अर्जुन वहीं पर है, वो तो यहाँ आया ही नहीं।
नहीं आया?
ठीक है, मैं पता करके थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ।
जी ठीक है।
स्नेहा, स्नेहा।
हाँ पूरब भैया, आ रही हूँ।
अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो
क्या हुआ भैया?
स्नेहा, तुमसे कुछ बात करनी है।
हाँ बोलो भैया।
सुनील बाबू का फोन आया था, भोपाल फैक्ट्री के लिए हमें कल ही निकलना होगा। मैंने बात की, इतनी जल्दी कैसे निकल पाऊंगा, पर उनका काम जरूरी है। समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी मैं कैसे जाऊँ, नहीं तो मैं मना कर देता हूँ।
नहीं भैया, बाद में नहीं, तुम उन्हें हाँ कह दो।
स्नेहा, पर
जिंदगी को फिर से संवारने का जो मौका तुम्हें आज मिला है, वो हाथ से जाने मत दो भैया। मैं हूँ ना यहाँ पे, प्रीता भी है साथ में, तुम भोपाल जाओगे।
इस बुआ जी की भी कोई सलाह मशवरा ले लो। देखा हा? तुम्हें भी भेला फुसला के घर से भेज रही है ये लड़की। अरे घर का इकलौता बेटा भला घर छोड़ के जाता है कहीं? अरे संपत्ति के वारिस हो तुम।
बुआ जी, आपको भैया को गले लगा के आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन आप उसे आगे बढ़ने के बदले फिर से दलदल में गिरने का इशारा दे रही है।
पूरा देखो भाई, इसको समझा दो। हा? बहसबाजी नहीं करना हमको इसके साथ। हाँ।
स्नेहा जो कह रही है वो गलत नहीं है बुआ। वैसे भी कल रात में ही आप बहुत कुछ अनाप शनाप कह चुकी हैं। फिर से शुरू मत कीजिए।
एलो। क्यों? बहन ने तुम्हारे पॉकेट में भी पैसे धर दिए हैं क्या, जो उसी की बोली बोल रहे हो
बुआ?
हाँ हाँ चिल्लाओ। अरे चाहो तो हम पे हाथ भी उठा दो, और क्या बाकी रह गया देखने को। लेकिन एक बार याद रखना, स्नेहा इस घर को जो पट्टी पढ़ा रही है ना, उस पर तुम लोग चले तो वो खुद तो डूबेगी, तुम सब लोगों को भी ले डूबेगी। हाँ, और ये कोई मशवरा नहीं है, चेतावनी है, चेतावनी। हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने और घर के लिए सुबुद्धि मांगने।
बुआ, बुआ के मन का गुस्सा है ये या मेरे प्रति उनका अंधा प्यार, पता नहीं। स्नेहा, तुम बुआ की बातों को दिल से मत लगाना। स्नेहा, तुम मेरे लिए बस एक छोटी बहन नहीं, एक बड़ी प्रेरणा हो। तुमसे मुझे बहुत हिम्मत मिली है।
ये हिम्मत मेरी दी नहीं है भैया, आपके अंदर की है, जो कभी कमजोर पड़ गई थी, पर यही हिम्मत आपको बहुत आगे ले जाएगी। हम सबकी जिंदगी के उतार चढ़ाव आपके सामने है, सबकी जिंदगी के अलग अलग रंगों को आपने देखा सुना, लेकिन कोई और भी थी प्रतापपुर में, जो दूसरों की जिंदगी संवारने को ही खुद की जिंदगी समझती थी। उनसे अभी तक मैं भी नहीं मिली थी। वो थी इस गांव की आशा, जिसका नाम था नीलिमा। नीलिमा से कई जिंदगियों की तार जुड़ी हुई थी, जैसे कि गायत्री जो गर्भवती थी और उसके पति शंकर से।
अरे घबराओ नहीं, लंबी सांस लो, कुछ नहीं होगा।
हमरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ होगा तो नहीं ना इस बार?
सब ठीक होगा, आशा दीदी ने जैसा बोला था हमने वो सब किया है। हमने अस्पताल से एम्बुलेंस भी बुलवा लिया है और आशा दीदी को भी खबर भिजवा दी है, वो आती ही होंगी।
नीलिमा गायत्री को अस्पताल ले जाने के लिए बस आने ही वाली थी। उसके कहने पर गायत्री के पति ने सारी तैयारी कर ली थी।
तुम्हारा सारा सामान भी बांध दिया है जैसा आशा दीदी ने बोला था, दो जोड़ी साफ सुथरे कपड़े और जो पैसा जमा किए हैं वो। अरे लो, आशा दीदी आ गई।
गायत्री, दर्द पूरी तरह शुरू हो गया है क्या?
नीलिमा दीदी, इस बार एकदम फूंक फूंक कर कदम रखे हैं हम दोनों, दर्द शुरू होते ही मैंने आपको और एम्बुलेंस दोनों को खबर कर दिया।
शंकर जी, क्या मानवता अस्पताल में पंजीकरण कराया था आपने?
जैसा आपने बोला था, गर्भ ठहरते ही हमने मानवता में पंजीकरण और जांच करवाई, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सुना है वहाँ बहुत ख्याल रखते हैं।
नीलिमा दीदी, हमको पता नहीं क्यों डर लग रहा है।
अरे माँ बनने जा रही हो, डर किस बात का?
हमारे सास ससुर तो एकदम भड़क रहे थे कि अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, चीर फाड़ होगी
तो समझा दिया ना आप लोगों ने कि अस्पताल जाना क्यों जरूरी है।
और क्या, अरे दो बार घर पे बच्चा बिगड़ गया, इस बार हम अड़ गए कि बच्चा अस्पताल में ही होगा। बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, प्रसव ठीक से होगा कि नहीं, ये सब घर पे थोड़ी ना पता चलेगा, अस्पताल में सब चीज की देखरेख होगी।
अगर आपकी तरह हर पति अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखे तो हर माँ भी स्वस्थ होगी और बच्चा भी। स्वस्थ माँ से परिवार भी स्वस्थ और खुश। लो, एम्बुलेंस भी आ गई, अब बस बच्चे की किलकारी सुनने का इंतजार करो।
मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे।
साथियों, आशा नीलिमा ने बताया कि अस्पताल में बच्चे को जन्म देना बहुत जरूरी है, इससे माँ और बच्चे दोनों की अच्छी देखभाल होती है। अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत मदद मिल जाती है। अस्पताल में अच्छे डॉक्टर होते हैं और सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। आपके इलाके में लोग अस्पताल में बच्चे के जन्म के बारे में क्या सोचते हैं? साथ ही ये भी बताएं कि आपके यहाँ अस्पताल में बच्चे के जन्म की कैसी सुविधाएं हैं। अपनी बात कहने के लिए फोन पर नंबर 3 दबाएं। फिर मिलेंगे, नमस्ते।
साथियों, अगर आपको ऐसे ही और भी कार्यक्रम सुनने हैं तो तैयार है मोबाइल वाणी का एक और मंच, आपके मनोरंजन और जानकारी की डोज को बढ़ाने के लिए। तो इस संदेश के चलते दौरान अभी दबाएं नंबर 9 का बटन और आ जाइए हमारे साथ।